जो हमने किया है करेंगे उसका प्लान सब आता है, या कुछ यहाँ तक ऐसा आएगा जो आपने अपनी चिंता नहीं की, मनुष्य देखा, एक बंदर देखा, और उस समय में देख रहे हैं क्या, आधा मनुष्य आधा बंदर, बेकार की चीजें सब आती, इसको कहते हैं विक्षेप। स्मरण में अधिक होगा, श्रवण में कम होगा, और कीर्तन में और भी कम होगा, किंतु ये होगा। तो समझो जब ये निष्ठा नहीं आई, जब ये एकदम चली जाएंगी, सब समय जब भगवत चिंतन कर रहे हैं कृष्ण की तो कृष्ण की, मंत्र जब कर रहे हैं गोपी जन बल्लभ इत्यादि का, एकमात्र वही रहे, हे वस्तु में चित्त लग जाए, नहीं तो ये विक्षेप हुआ। विक्षेप नहीं होना चाहिए, विक्षेप जब है तो सभी निष्ठा नहीं आई। और एक है अप्रतिपत्ति, इच्छा तो है जो नाम करूं, इच्छा करती है जो मैं श्रवण करूं, इच्छा करती है मैं ध्यान करूं, किंतु रुचि ही नहीं लगती, मन ही नहीं लगता। बैठ करके हरि नाम कर रहा था, जब मन नहीं लगा तो थोड़ा सा टहल ले, तो टहल टहल तो देखा जी एक आदमी खड़ा है, भाई यहाँ पर किस लिए खड़े हो, हरे कृष्ण किस लिए खड़ा है भाई, मन नहीं लगता इधर, तो इसलिए टहलते हैं, टहलने के बाद में बातचीत करते हैं, बातचीत करते हैं उसमें रम जाते हैं, ये क्या हुआ, सामर्थ्य नहीं है, इच्छा होने पर नहीं, मन ही नहीं लगता। कभी कभी ऐसा होता है कि हरिनाम कर रहे हैं और चित्त इधर उधर जा रहा है, और देखा है एक लड़का एक टेबल पर ग्लास पानी में रखा था, उसको उलट दिया, और यहां से मैं देख रहा हूं, ये देख रहा हूं, ये दोष किसका है, उस बच्चे का दोष है ना हमारा दोष, हमारा चित्त इधर उधर जा रहा है, देखा जी उसने ग्लास ऊपर से गिरा दिया, उठ करके माला को रख दिया, एक थप्पड़ दे दिया, ये किसका, अब तुम्हारा चित्त शांत तुम नहीं कर रहा, अब बच्चे पर उस तुम दे रहा है। इसलिए हरि नाम यदि एकाग्र में करता है, हरि कथा सुन रहा है, तुमको डांटने का मौका कहां, एक निश्चित चीज से हरि नाम करो, एक निश्चित से श्रवण करो, यहां पर श्रवण कर रहे हैं तो वहां से कुछ आवाज आए, तो अब जो ठीक से नहीं सुन रहा था, अरे भाई देखो तो वो दौड़ करके जाएगा, हरी कथा छोड़ करके जाएगा उसको मना करने के लिए, क्यों, निविष्ट से नहीं सुन रहा, दूसरा जाकर के पीठ पाट दिया उसको, सबका चित्त उधर में आकृष्ट कर लिया। इसलिए ये कषाय कहा, हरिनाम करते समय में, हरी कथा श्रवण करते समय में और स्मरण करते समय में यदि क्रोध हो, किसी प्रकार की कामना हो, लोभ हो, अभिमान हो, ये इसको कहते हैं कषाय। कषाय माने काला रंग, खराब रंग, मन को उसमें, उसमें भजवान, न तो कीर्तन होता है न स्मरण होता है। यदि कीर्तन कर रहे हो और कोई संसारिक चीजें याद आ गई और देखा जी वहां पर हानि होगी, कोई हानि कर रहा है, उसमें क्रोध भी हो सकता है, लोभ के वजह से उस कीर्तन को छोड़ करके चले जा सकते हैं। एक हरिनाम संकीर्तन व्यक्ति कर रहा है, परीक्षित महाराज जी हरि कथा सुन रहे हैं, और उस समय राज्य में कोई विप्लव हो गया, परीक्षित महाराज जी उठ करके जाएंगे कि नहीं विप्लव को दूर करने के लिए, शांत करने के लिए, नहीं जाएंगे, एक चित्त से बैठे, उसी प्रकार से कीर्तन में, स्मरण में और ये सब में किसी प्रकार का कषाय अर्थात काम क्रोध लोभ मद मोह मद सर्य इत्यादि नहीं होना चाहिए, किंतु थोड़ा सा ऊपर की स्टेज है, साधारण नहीं, थोड़ी सी है, अभी अभी आरंभ नहीं भजन हुआ, अभी निष्ठा नहीं है, अभी केवल लालसा जगी है, रसा स्वाद ये भी दूर होना चाहिए। रसा स्वाद किसको कहते हैं, विषयों का रस का स्वाद ले रहे हैं, क्या हरिनाम कर रहे हैं, किसी ने हमको 10,000 रुपए हमारे सामने लेकर के रख दिए, अब उस इतना आनंद हुआ, खुशी हुई, 10,000 रुपए अभी मिल गए, वाह, उठा करके पॉकेट में रख लिए, हरे कृष्ण कर रहे हैं, बड़ा आनंद हो रहा है, आनंद हो रहा है, रुपए का प्रतिष्ठा का प्रतिष्ठा मिल रही है ने? कोई चीज ऐसी संसार की कोई चीज मिल गई, इसको कहते हैं रसासाद, विषयों में आस्वाद ले रहे हैं और इधर में हरि नाम और हरि कथा और इसमें रुचि कम, इसको कहते हैं रसास्वाद। ये पांचों चीजें दूर होनी है तब निष्ठा आएगी, तब निष्ठा के अनुसार में भजन होगा। ये मापदंड है इसका। कितना हुआ, 1 घंटा हो गया है? निष्ठा माने निश्चला बुद्धि, प्राण जाय बरु भजन न जाय, ये वहां पर प्राण जाय बरु वचन न जाय, प्राण जाय बरु ऐसी निष्ठा हो जाए। मन नहीं लगा कोई बात नहीं, हम तो करना है, हमारा चित्त इधर उधर जा रहा है, कोई बात नहीं, जाए कहां तक जाएगा, हमको तो भजन करना है, हम इतना करके 1,50,000 या जितना हमारा संकल्प है उतना नाम करेंगे, ठाकुर जी का पूजन अर्चन करेंगे, ठाकुर जी का प्रसाद बनाएंगे देंगे और उनका चिंतन करेंगे, भले ही चित्त नहीं लगता है कोई बात नहीं, हम तो कर रहेंगे, और ये सब चीजें दूर हो गई तब निष्ठा। अब निष्ठा कैसी है और रुचि कैसी है, इसकी अवस्थाएं हैं हम अब कल पढ़ने।
महाराज ये
चीजों के अनुसार में चले, अपने से उन्नत जो वैष्णव है उनका संग हो, जिनमें ये चीजें दोष नहीं है, ऐसे लोगों का संग करने पढ़ा जाएगा। अपने से जो अधिक पढ़ा लिखा है उससे तो, जो पढ़ा नहीं नहीं जानता, पढ़ा ही नहीं है वो क्या पढ़ाएगा, इसलिए ऐसा व्यक्ति हो तो उसके साथ में ऐसा किया जा हो सकता है। कल हम लोग एकदम जैसे आज यहाँ पर प्रारंभ हुआ और हरी कथा हुई, अगले दिन भाटिया जी, विजय कृष्ण भाटिया जी के एड्रेस क्या है, करीब 1,000 वर्ष पहले, 1,000 वर्ष पहले महाप्रभु से बहुत आगे तो उन्होंने एक पद की रचना की थी,
पुरुषों के द्वारा
कोई जो भगवान के जो कीर्तन हैं पद हैं, जैसे सूरदास के पद हैं, तुलसीदास जी की रामायण है या पद हैं, मीरा जय के पद हैं, कृष्णदास कविराज गोस्वामी के जुड़ के रूप गोस्वामी की जो प्रार्थना है, राधे जय जय माँ भगवती, ये सब में शक्ति निहित है। इसलिए जैसे तैसे अरे खरे गरे के कीर्तन नहीं गाना चाहिए। जो ऐसे उच्च कोटि के भक्त हों उसमें शक्ति संचरित होती है और भगवान की इस पर कृपा होती है। उन्होंने इसमें अनुवाद दिया गया है, तभी मैं संक्षेप में दो एक बातें बतला रहा हूँ। यहाँ पर कृष्ण की वंदना है, राधा और कृष्ण। कृष्ण वो कौन? नंदनंदन कृष्ण, ब्रजेंद्रनंदन श्याम सुंदर है। यहाँ पर देव कहने से वही समस्त देवताओं के भी, देवों के भी, जो समस्त भगवत अवतार हैं उन सब के भी अवतारों के भी मूल अवतारी जो कृष्ण हैं। सित कमला कुछ मंडल देत कुंडले, गोपियों और विशेष करके कमला यहाँ पर राधा जी हैं। राधा जी के सिवाय एक क्षण भी नहीं रह सकते। यदि उनके शरीर के अंगों का यदि अवलंबन ना लें तो मूर्छित हो जाते हैं, गिर जाते हैं। बंसी करण निपतिता, राधा जी को देखने से ही उनके हाथों से बंसी गिर जाती है, इतनी कृष्ण की सेवा करने वाली हैं, इतनी परम सुंदरी हैं। रूपवती गुणवती और सेवा करने वाली भगवान की लादनी शक्ति हैं। उनका काम ही है कृष्ण को प्रसन्न करना। इसलिए जब भी कृष्ण उनको देखते हैं, बंसी करान निपतिता, हाथ से बंसी गिर जाती है और मोर मुकुट गिर जाता है। यहाँ तक कि करान निपतिता स्खलितम शिखंडम भ्रष्टं च पीत वसनम, उनके पीत वसन गिर जाते हैं। ये सब कपड़े हैं वहाँ से, न जाने कब गिर पड़े, होश नहीं, और यहाँ तक कि स्वयं मूर्छित हो जाते हैं। उस समय में यदि नंद बाबा इत्यादि पास में हैं तो उन्हीं का अंगों को पकड़ करके और वो संभल जाते हैं। इसलिए से तो कमला कुछ मंडल जो तो कुंडल ए, गोपियों के गान ही उनके कुंडल हैं। एक तो सुंदर उनके कमल जैसे ये कुंडल झलमल कर रहे हैं, साथ साथ में गोपियों की जितनी सेवाएं हैं, उनके गान हैं, उनके गुण हैं, वही मानो उनके कुंडल हैं। कलित ललित बनमाल, सुंदर माला झलमल कर रही है, पंचरंगों की सुंदर सुगंध सुगंध आ रही है, उसमें तुलसी की मंजरी भी लगी हुई है और उसमें भौरे भी झंकार कर रहे हैं, अद्भुत, गले से लेकर के पैरों तक माला है। जय जय देव हरे, देख रहे हैं मानो अपने भाव नेत्रों से देख रहे हैं और देख करके ये लिख रहे हैं, ऐसे ही नहीं। दिनमणि मंडन मंडल मंडन भवखंडन ए मुनियन मान सहंस, जय जय देव हरे। सूर्य मंडल को भी प्रकाश देने वाले, सूर्य को भी प्रकाशित करने वाले, सवितुर भरण्यम, सूर्य को भी सूर्य के आराध्य हैं, सूर्य जो तपते हैं प्रकाश देते हैं, ये किससे? उन्हीं से, उनके थोड़े से गुण के आभास से ये प्रकाशित होते हैं। यदि कोई कृष्ण का यदि स्मरण करता है, भवबंधन को काट देते हैं, उनका नाम यदि कोई स्मरण करता है, कीर्तन करता है, जहाँ उनका जन्म हुआ है वहाँ पर जाता है कोई, जहाँ उनकी लीलाएं हुई हैं, भवबंधन सदा के लिए कट जाता है। भवबंधन माने क्या? जन्म और मरण में आना ही भवबंधन है, सबको काट करके दोस्त कर देते हैं। इसलिए मननशील जो साधु हैं, बुद्धिमान जो साधु संत हैं, मुनिजन हैं, उनके मन रूपी सरोवर में विहार करने वाले ये कृष्णचंद्र हैं। हे देव, तुम्हारी बार बार जय हो, तुम्हारी जय हो। कालिय नाक के मद का मर्दन करने वाले आप हैं, काली के शरीर में बहुत विष है, कालकूट से भी विष। उस विष का भी जहां पर मूल आधार है उसका मान मर्दन करने वाले हैं, और खेल ही खेल में उसके हजारों फणों को तोड़ दिया और उस पर नित्य कर रहे हैं, और अपने जो जन हैं व्रजजनों का मनोरंजन करते हैं उसी पर नित्य करके। इसलिए जिसके हृदय में ताप है, ज्वाला है संसार की, यदि उनका स्मरण करे तो वो सब सदा के लिए दूर हो जाएगा। हे हरे, जदकुल जदुरूपी कुल के कमल को विकसित करने के लिए आप सूर्य के समान हैं। जैसे सूर्य को देख करके कमल खिल जाता है, जदुकुल, जदुकुल मैंने यहाँ पर जदु से उत्पन्न जो कुल है अर्थात नंदनंदन और ये ब्रजेंद्र का कुल और उनका भी कुल, दोनों कुल आया। तुम्हारी बार बार जय हो। मधु दैत्य, मूर, नरकासुर सबका विनाश करने वाले हैं, असुरों का ध्वंस करने वाले हैं, और गरुड़ पर बैठ करके चलने वाले हैं। मन की गति से गरुड़ चलता है, ये स्मरण किया वो चला है, कल पुर्जे की कोई जरूरत नहीं, बस मन से कहा और गरुड़ जहां इच्छा तहां एकदम बैकुंठ तक भर लेकर के चले जाएंगे। ये विमान तो वहां तक नहीं जाएगा, ऐसे विमान पर चढ़ करके चलने वाले सबकी इच्छा को पूर्ण करने वाले हैं, और देवताओं के की क्रीड़ा के आदि कारण स्वरूप हैं। हे हरे, आपकी पुनः पुनः जय हो। रामावतार में जनक सुता कृत भूषण, जनक सुता कृत वन में जब गए सुंदर सुंदर मालाओं से रामचंद्र जी का केश बेश बनाती और उनका भूषण करती थी सीता जी। ये राम भी कृष्ण ही हैं, कृष्ण का ही एक वैभव प्रकाश है, इसलिए सीता जी जिस राम को आभूषण कर रही आभूषित कर रही हैं, और जिन्होंने खरदूषण इत्यादि राक्षसों का क्षण मात्र में विनाश कर दिया, साधारण थे रावण जैसे बलशाली थे, उन सब का विनाश कर दिया। दूषण माने क्या? खर माने गधा। गधा किसको कहते हैं? अज्ञानी को, जिसको भगवत भजन का ज्ञान नहीं है, उन लोगों को इसी कोटि में रखा गया है शास्त्रों में, उनको कोई ज्ञान नहीं है। संसार भर का मैला वो ढोता है, पहाड़ों पर गुड़ लेकर के, चीनी लेकर के, घी लेकर के जाता, कोई भी चीज आस्वादन नहीं कर सकता। ऐसे शास्त्रों को पढ़ने वाले हैं, पढ़ते रहे, और जो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं तो उसका आस्वादन नहीं करते, वो सभी गधे के समान है। धर्म नहीं ना पशुभू समान, ऐसा लिखा गया है। और दूसरा में जितने प्रकार के दोष हैं उसका मूर्त विग्रह ये दूषण है, दोनों का विनाश करने वाले ये रामचंद्र जी हैं। ऐसे रावण को शांत करने वाले, समाप्त करने वाले रामचंद्र ये कृष्ण ही हैं। इसलिए हे देव, आपकी जय हो, जय हो। नमिल जलधर के समान जिनका अंगों का रंग है, और स्थिर विद्युत पीताम्बर जैसे उनके शरीर पर सुशोभित हो रहा है। राधारूप महालक्ष्मी जी के मुख रूपी चंद्र के चकोर है। कहाँ इनका मुख चंद्र होगा और जगत के लोग चकोर जैसा उनको देखेंगे, ऐसा नहीं कह करके इन्होंने बतलाया। ये कृष्ण की सबसे बड़ी प्रशंसा है, ये राधा रूपी मुख के चंद्र के ये चकोर कौन है? ये कृष्ण है। हे 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 देव, हे हरे, तुम्हारी जय हो। जयदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि हमारे संकटों को हरण करने वाले, संकट क्या? आपका दर्शन नहीं हो रहा, यही हमारा संकट है। मैं विरह में छटपट कर रहा हूँ, इसलिए हमें आप दर्शन दे करके हमारा संकट को दूर कीजिए। आप जितने प्रकार के भक्त जो प्रणत जन हैं, प्रणत माने जो भगवान के चरण में शरणागत हुए हैं, उन सब का आप जरूर दुख क्लेश दूर कीजिए। इस तरह से जयदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मैंने ये देव जो कृष्ण हैं उनके लिए मैंने सुंदर मंगलमय यह निर्मल गीत की रचना की, जिससे प्रभु प्रसन्न होकर के जगतवासी जो इस प्रार्थना को करेंगे उन सबका कल्याण विधान करें। इसलिए हम लोग महापुरुषों के रचित कीर्तन ही पद गाया करेंगे। इसलिए नरोत्तम ठाकुर जी के पद, भक्ति विनोद ठाकुर जी के पद हैं, सूरदास जी हैं, मीरा के भी कर सकते हैं। इसमें से गोपियों के साथ में कृष्ण का जितना संबंध है उसमें विशेष रुचि हम लोग लेंगे, उससे कृष्ण सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं। इसलिए हम लोग वैसे कीर्तन करेंगे जिससे कि वो कृष्ण प्रसन्न हो।
ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंचाकल्पतरुभ्यश्च सुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो नमो महाबद।
भक्ति के संबंध में सुना, भक्ति किसी चीज की अपेक्षा नहीं रखती, विद्या धन पौरुष बल रूप किसी चीज की प्रतीक्षा नहीं करती, अपेक्षा नहीं करती। भगवान के प्रति यदि कोई प्रणत होकर के और उनकी सेवा की वासना रखता है, बस इसी से प्रसन्न होते हैं। उन लोगों में कोई गुण नहीं थे, उन लोगों में तो ब्राह्मणों में तो बहुत तरह के गुण थे, परम विद्वान थे, तपस्वी थे, वेद इत्यादि का सब जानने वाले थे, यज्ञ इत्यादि जानते, तो कोई लोग इस भाव को देकर के ये कपड़े नहीं बदलती, तीन बार स्नान नहीं करती, जैसे तैसे कृष्ण का भोग लगा देती हैं, तो ये कृष्ण ग्रहण नहीं करेंगे तुम लोगों के अंदर में, उनके प्रति कुछ अपराध हो जाएगा, हम लोग समझ नहीं सकेंगे उनके भाव। एक स्त्री थी, उसका एक छोटा सा बच्चा था, तो वो बच्चे को बड़ी प्यार करती थी, और ठाकुर जी की एक मूर्ति थी गोपाल जी की, तो गोपाल जी से उस लड़के की बड़ा मित्रता हो गई, सख्य भाव, तो ठाकुर जी निकल करके उसके साथ में खेलते और ब्राह्मणी दोनों को प्यार करती। सवेरे होने होते ही कलेवा के लिए रोने लगते, और वो बेचारी ब्राह्मणी खिचड़ी बना रही है, दातन कर रही है, अब स्नान नहीं किया कुछ नहीं और दातन कर रही है, तो खिचड़ी चलाने के लिए कलछी को माजना भी तो बहुत दूर की बात, वो ऐसे करते हैं ऐसे पीछे से चला दिया दातन से ही, तो उसका सारा जूठा तो उसमें गया। सनातन गोस्वामी ने देख करके कहा, जी अरे मैया तू क्या कर रही, अरे ये ठाकुर जी है ना और तुम्हारा बच्चा भी तो बच्चा है, अपवित्र चीज भोजन कराती है और कृष्ण को ऐसे बाल गोपाल को खिलाती है। बेटा मैं ये नहीं समझती थी जैसे ये जूठा है या क्या चीज़ है, मैं तो ऐसे ही दे देती थी। नहीं नहीं तुम स्नान करके पवित्र हो करके रसोई बना करके दे। अच्छा कल से ऐसा ही करो। अब कल वो जब हुआ, वो सवेरे जमुना जी में स्नान करने गई, दोनों बच्चे उठ करके रोने लगे, खाने के लिए मैया 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 रो रहे हैं, और सनातन गोस्वामी देख रहे हैं ये दोनों बच्चे रो रहे हैं, ठाकुर जी भी रो रहे हैं और उसका बच्चा भी। इतने में स्नान करके आई तो सनातन गोस्वामी जी उस बुढ़िया के चरणों में गिर पड़े और मैया तू ऐसा जैसे करती थी वैसे कर, तुम्हारा जूठो खाने के लिए ही यदि ये ललक रहा है उसके लिए रो रहा है तो तू जूठा ही खिला। पवित्र चीज कोई जरूरी नहीं जो वो खाते हैं, वो तो मन की भावनाओं को आस्वादन करते हैं, वस्तु की भूख नहीं है उनको, प्रेम की भूख है। ये प्रेम से ही नंदलाला मिलते हैं और किसी से, वो किसी भी व्यक्ति में हो, चाहे शबरी में हो, चाहे किसी महिला में हो, किसी ब्राह्मण में हो, किसी शूद्र में चंडाल में हो, या किसी देवता में हो, कहीं भी वो प्रेम हो उसको ग्रहण करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति में प्रेम होने की संभावना है, सबका अधिकार है भगवान के भजन, ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है भगवान का भजन करने में अधिकारी नहीं है। इसी प्रेम को देने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए। यदि प्रेम है ऊपर का सदाचार रहे और न रहे उसे कोई मतलब नहीं, और प्रेम नहीं है तो षोड़श प्रकार से सोने के मंदिर में ठाकुर जी सोने के बने हुए हैं, जवाहरात के उनके आभूषण हैं और सोने के कलश से खीर पायस भोग दे रहे हैं, वो नहीं लेंगे। और सबरी के घर में केले के छिलके से उनका पेट भर जाएगा। सब कुछ प्रेम के ऊपर में निर्भर करता है, महाप्रभु इसी प्रेम की दे दिया है। वो प्रेम कैसे मिलेगा, हम लोग माधुर्य कादंबिनी से साधन कैसे किया जाना चाहिए उनको पाने के लिए, वो प्रेम कैसे हमारे इधर में आए, उसी के लिए मैं बतला रहा हूं। इस यात्रा में आज हम लोगों का अंतिम पड़ाव रहेगा, फिर आएंगे तो इसके बाद वाला फिर हम आरंभ करेंगे। अभी एक दो बार और लगेगा तब ये समाप्त होगी। निष्ठा के संबंध में बतलाया था, बीज भक्ति लता का बीज क्या है, कृष्ण की सेवा की वासना, मैं कृष्ण की सेवा करूंगा करूंगी, ये वासना गुरु जी दे देते हैं। देखो तुम्हारा किसी विषय से कल्याण नहीं होगा, कल्याण होगा किसके द्वारा, यदि तुम्हारे अंदर में ये भावना है कि मैं कृष्ण की सेवा करूंगी या करूंगा, बस इस भावना से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ये बीज हुआ, बीज होने के साथ साथ में कुछ लताएं इधर उधर आ जाती हैं, कुछ घास हो जाती है, उसको निकाल फेंकना है। ये अनर्थ हैं, भजन करते समय में बहुत से अनर्थ रहते हैं, गुरु पदाश्रय और उसके बाद में अनर्थ रहता है, अनर्थों के संबंध में विस्तृत विवेचना मैंने कई दिन से कर रहा हूँ। जब वो सब चीजें अनर्थ दूर हो जाता है, कल हमने बताया अपराध नहीं रहने पर भी नींद का आ जाना, भगवान के भजन के समय में श्रवण कीर्तन स्मरण के समय में चित्त में तरह तरह के विक्षेप आ जाते हैं, चिंताएं आ जाती हैं और उस समय भगवान का नाम कीर्तन स्मरण भूल जाते हैं और कभी कभी इच्छा ही नहीं होती भजन करने की, और कभी कभी कुछ भजन करते समय में कौन सगुण भजन, वो भजन करते 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 सगुण अर्थात कामना युक्त कर्म मिश्रा ज्ञान मिश्रा भक्ति करते 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 बहुत से लोग आकर्षित हो जाते हैं, रुपए पैसे प्रतिष्ठा सभी कुछ उनको दे देते हैं, लाखों करोड़ों रुपए की संपत्ति उनको दे देते हैं, यदि उसी में फंस गए तो मुश्किल हो गया। इसलिए उस समय की याद आएगी जैसे इतने वाह आज तो प्रणामी हमें 10,000 रुपया मिला, 20,000 रुपया मिला, 1,00,000 रुपया मिला, या आज हमको ये सुख हुआ, ये ऐसा आनंद हुआ, बस उसी में भूल गए और भजन साधो कुछ। इसे भी साधक को बचना चाहिए, तब जा करके निष्ठा होती है। निष्ठा माने अब किसी प्रकार का अनर्थ है, अनर्थ है, सांप है, किंतु सांप काट नहीं सकता, अनर्थ है किंतु अब कोई खुराफात नहीं कर रहे, जरा शांत हो रहे हैं धीरे 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 भजन करते के प्रभाव से। भागवत में लिखा गया है श्रीमतांग स्व कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थो जभद्राणी विधुनोत् सुहित सताम नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत उत्तम श्लोके भक्तिर भवति नैष्ठिकी। निष्ठा भक्ति के संबंध में कहा गया, यदि कोई भगवान का श्रवण कीर्तन स्मरण कर रहा है तो कृष्ण क्या करते हैं, सती सास उसके हृदय में कीर्तन के माध्यम से, श्रवण के कथाओं के श्रवण के माध्यम से उसके हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। भगवान की कथाओं को सुनने से जरूर फल होगा अवश्य में, किंतु थोड़ा सा रुकावट होती है जहां पर विघ्न बाधा कुछ है, अनर्थ है। तो अभी यदि भगवान की कथा सुना जाए तो पुण्य श्रवण कीर्तन, उनका श्रवण कीर्तन और स्मरण इत्यादि करने से ये सब चीजें दूर हो जाती है, भगवान स्वयं उसके हृदय में बैठ जाते हैं और बैठ करके क्या करते हैं, सुहित परम बंधु बन जाते हैं। और बंधु बन करके क्या करते हैं, यदि किसी के घर में कोई एक बंधु आए, बंधु माने मित्र आए, और देखा चेयर तो पड़ी है बैठने के लिए किंतु इस पर धूल लगी हुई है, पॉकेट से रुमाल निकाल करके और उसको साफ करके बैठ जाता। इतने में घर वाला आया, अरे ये क्या कर रहे, कोई बात नहीं, हमें तुम्हें अंतर क्या है, बैठो 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 बैठ करके बातचीत करने लगा। देखा जैसे हमारे बंधु आए उनको खाने की कोई ज़रूरत है, तो वो क्या करेगा, अपने स्त्री के या बच्चों को इशारे कर दिया, कोई अच्छी चीज ले आओ, अरे ये क्या कर, मत लाओ मत लाओ, अरे ठाकुर जी के भूखे लिए ला रहा हूँ, तुम्हारे लिए थोड़े ला रहा हूँ, ला रहा है किसके लिए,
मित्र के लिए,
ये बंधुत्व है ना। ऐसे ही भगवान सुहित बन करके कथाओं के माध्यम से उसके हृदय में प्रवेश करके और अपने लिए आसन बना लेते हैं, अर्थात तो अनर्थों को दूर कर देते हैं। इसलिए जल्दी से उसके अनर्थ अपराध जो कुछ है सब धीरे 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 दूर हो जाता है। तब क्या होता है, नष्ट प्राय अभद्रेशु, जितने प्रकार के अभद्र हैं भगवत भक्ति में बाधाएं हैं, क्या बाधाएं हैं, काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य नमापराध सेवापराध और जो अनर्थ बतलाए, ये सब चीजों को जब अब थोड़ा सा बाकी रह गया, किंतु नित्य भागवत सेवाया, और भागवत की सेवा होगी, भागवत की सेवा दो प्रकार की, एक भक्त भागवत है और एक ग्रंथ भागवत है। भागवत जो होता है ये वैष्णवों को, जो उत्तम कोटि के जो वैष्णव होते हैं उनको भागवत कहते हैं, और उनके मुख से भागवत की कथा यदि हो तो ये भागवत है। भागवत की पुस्तक है, हम लोग उसको पढ़ेंगे, अनर्थग्रस्त लोग एक अक्षर भी नहीं समझ में आएगा। कल बतलाया था कि परसों बतलाया था, राम तुम कहाँ गया था, राम तुम कहाँ गया था, राम तुम कहाँ गया था, इसके तीन अर्थ होते हैं। उसी तरह से इसमें कौन सा टोन भरा पड़ा है भागवत में, ये समझ में नहीं आएगा, हम लोगों की बातें साधारण आदमी नहीं समझ पाते हैं। तो भगवान की बातें तो बहुत और भागवत की तो बातें समझना बहुत मुश्किल है। इसलिए यदि भागवत भी पढ़ना है, गीता पढ़ना है, तो भागवत के पास में जाओ, उनकी सेवा करो। कैसे, पणिपाते न परिप्रश्ने न और सेवा, तब वो तुमको देंगे, ऐसे ही नहीं दे देंगे, अंततः तुम्हारे अंदर में श्रद्धा नहीं रहेगी, सेवा की प्रवृत्ति नहीं रहेगी, और तुम उसको अनुष्ठान में लाएगा काम में नहीं, तो क्यों देंगे। इसलिए परिप्रश्न इत्यादि के द्वारा उस चीज को ग्रहण करना चाहिए, तो अब वो बतलाते हैं। तो नष्ट प्रायशु अभद्रेशु, जब अब अभद्र नष्ट होने लगे, अब कुछ रुचि होने लगी, निष्ठा होने लगी, तो भगवान की नित्य सेवा करने से, भागवत की नित्य सेवा करने से और भक्तों की सेवा करने से, भगवान जो उत्तम श्लोक हैं उनके चरणों में निष्ठा भक्ति होती है। उत्तम श्लोक किसको कहते हैं, इस पर विचार करेंगे। उत्तम कहता है ये उत्तम व्यक्ति हैं, सद्गुण है ना, होने में भी भगवान नारायण उत्तम है, नारायण से भी राम में लीलाएं हैं, इसलिए वो उत्तम और हैं, भक्त वात्सल्य इत्यादि राम में अधिक है। उसके बाद में द्वारकाधीश और भी उत्तम है, उनसे भी उत्तम कौन है, मथुरेश कृष्ण, उनसे भी उत्तम कौन है, ब्रजेश नंदन श्याम सुंदर, जो सखाओं के सखा है, उन सभी उत्तम कौन है? जसोदा के नंदन है, जसोदा के लाडली पुत्र है। और इन सभी श्रेष्ठ कौन है? गोपियों के कृष्ण है। और इन गोपियों के कृष्ण से कौन सुंदर है, सबसे अच्छे? राधा कांत, राधा रमन, राधा कांत, ये सबसे, ये है उत्तम श्लोक। ऐसे उत्तम श्लोक राधा कृष्ण में, राधा रमन कृष्ण में के चरणों में निष्ठा होती है। इसके अतिरिक्त और दूसरा कोई कारण नहीं है जिसके द्वारा हो सके। इसलिए निरंतर भागवत की सेवा करो, अर्थात भागवत श्रवण करो, और साथ साथ में क्या करो, जिनसे सुन रहे हो ऐसे उत्तम कोटि के भागवत हो, और उनसे सुनो तो उसमें शक्ति संचरित होती है। तब इन तथ्यों को जान करके जो हम अभी बतला रहे हैं, जो श्रद्धा से निष्ठा रुचि या शक्ति भाव, तब ये होगा। निष्ठा का जो कहते हैं निश्चलता को, एक लैंप जल रहा है, हवा के झोंके आ रहे हैं और वो ऐसे ऐसे कर रहा है लप लप इधर इधर, और थोड़ी सी आवाज यदि हवा है तो बुझ जाएगी। वो श्रद्धा अभी कोमल श्रद्धा है, अनर्थग्रस्त है, वो बुझ भी सकती है यदि नित्य भागवत की कथा न सुनी जाए और भक्तों का संग नहीं किया जाए। तो कहते हैं कि जैसे वो एकदम स्थिर हो गई, हवा नहीं है, शांत एकदम, ऐसे वो जो कृष्ण के चरणों में ही निष्ठा है, कृष्ण का अतिरिक्त और हम, हमारा चित्त कहीं नहीं जाएगा, एकांतिक रूप में कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं करूंगा, ऐसी बुद्धि का नाम है निश्चयात्मक भक्ति। प्राण जाने पर भी भगवान की भक्ति नहीं छोड़ सकता। हरिदास ठाकुर जी ने कहा था, प्राण भले ही चले जाए, बोटी बोटी काट दे, मैं कृष्ण नाम नहीं छोड़ सकता। ऐसे यदि हो तब तो उसमें निष्ठा है, तब ये निष्ठा से रुचि और आसक्ति और अंत में प्रेम होगा। निष्ठा दो प्रकार की बतलाई गई, एक है साक्षात भक्ति वर्तिनी और एक होती है तदनुकूल वस्तु वर्तिनी। वस्तु क्या है? अभी साधन, श्रवण, भगवान का श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य सख आत्मनिवेदन, ये वस्तु है, वस्तु विषय नहीं है, अर्थात साधन। अभी अभी भजनीय नहीं, अभी साधन के प्रति निष्ठा होगी पहले ने? तो एक होती है साक्षात भक्ति वर्तिनी, अर्थात श्रवण में निष्ठा है। यदि काम कोई खराब हो रहा है तो नहीं, हम पहले अपना कीर्तन कर लेंगे तब फिर जाएंगे, हमारी निष्ठा ऐसी है। पतिदेव जा रहे हैं, सवेरे भोजन उनको देना है। अच्छा, ठाकुर जी की सेवा कर थोड़ी सी ये हो गई, बच्चे रोने लगे, बच्चों को रुलाई छोड़ करके बच्चों के लिए कुछ करने लगे, इतने पतिदेव ऑफिस जाने लगे, इतने में कोई दूसरा आदमी आया, अच्छा अब करूँगा, अब ये कर लूँ काम। करते 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 12-1 बज गया, समय नहीं मिला, तब ठाकुर जी की तो सेवा करनी है, बस धूप और दीप जला करके ऐसे ऐसे कर करके फिर रसोई में चली गई या अपने दूसरे काम। या पुरुष लोगों के लिए भी साधारण अवस्था में ऐसा ही होता है, पहले संसारी काम, इसके बाद में भक्ति। और निष्ठा होने पर क्या होगा? बुद्धिपूर्वक निश्चय, पहले भगवान का ये काम करके तब फिर और काम करूंगा। इस प्रकार से दोनों में अंतर हो जाता है। किसमें? श्रवण में, भगवान की कथा का श्रवण कर रहे हैं, यदि कोई जरूरी भी काम हुआ पीछे देख लेंगे। एक जगह कीर्तन हो रहा था, एक सिपाही था, उसकी लगन थी कीर्तन में, कीर्तन होते उसकी ड्यूटी थी 12 से 2 बजे, दो घंटा रात में, और उस समय में वो कीर्तन में लग गया, याद ही नहीं रही ड्यूटी। इधर में सवेरे पहुंचा, 2 बजे के बाद में पहुंचा, धरा हुआ है? उसके हवलदार जो थे, चौकी के जो बड़े हैं, उन्होंने कहा जिसे, अरे तुम अब कहाँ से आया है? आज तुम्हारे लिए सर्विस बुक पर सुपरिंटेंडेंट पुलिस आए थे, SP, उन्होंने गुड मार्क लिखा है और तुमको पदोन्नति बहुत शीघ्र होगी। आज तो मैं ड्यूटी में आया ही नहीं, तो वो लिख कैसे दिया? तने तुम तो थे, अभी तो तुम यहाँ से गया, फिर यहाँ पर लौट करके क्यों आया? तो मैं तो डरा हुआ, मैं तो कीर्तन में रमा हुआ था। सुनते ही बस जब देखा सर्विस बुक तो उसमें लिखा है गुड कैरेक्टर। वो सुन करके, यह एकदम सत्य बात, कुछ दिनों पहले की बात है, और उसने रिजाइन दे दिया। अब हमको सर्विस करने की जरूरत नहीं है, अब तो प्रभु की ही सर्विस करूंगा, छोड़ करके चला गया। ये सब निष्ठा का परिचायक है। हमारा ये काम हो जाएगा खत्म, या ये नष्ट हो जाएगा, इसलिए पीछे करूंगा। भक्ति की प्रधानता ना दे करके कर्मों की प्रधानता देता है, उसमें निष्ठा का परिचायक नहीं है। इसलिए श्रवण कीर्तन में उसकी निष्ठा होती है। और दूसरा होता है तद अनुकूल वस्तु वर्तनी, भक्ति में जो अनुकूल चीजें हैं, भक्ति में नहीं उसके अनुकूल चीजों में निष्ठा का होना। जैसे खूब मधुर भाषी होना, सत्य बोलना, दूसरों की को प्रतिष्ठा देना, अपने लिए प्रतिष्ठा की कोई भावना नहीं होना, ये सब गुण हैं। दूसरों से कोई चीज लेकर के और बड़ा कोई उत्सव कर रहे हैं, संग्रह के या दूसरों से, और कोई एक उत्सव कर रहे हैं, उसी में लगा दिया समय, भगवान का खुद स्मरण इत्यादि नहीं किया, वो अच्छा है, ठीक है, भक्ति के अनुकूल है, वो बात तो ठीक है, किंतु साक्षात भक्ति नहीं है। इसलिए अमानी मानद दयालुता मधुरभाषी कृपालुता अकृत, दो माने कोई दुराचरण करने पर दुराचरण नहीं करता है, देश भावना नहीं रहा, ये सब ठीक है, भक्ति के अनुकूल है, किंतु भक्ति नहीं है। यदि सारा जीवन कोई एक व्यक्ति करता रहे उसका कुछ भी नहीं होगा, भक्ति नहीं है। और यदि भक्ति है और यदि थोड़ा सा क्रोध भी है कोई भी बात नहीं है। यदि मधुरभाषी नहीं, थोड़ा सा रूढ़ बोलता है तो भी कोई बात नहीं, भक्ति थोड़े दिनों में उसके इस दुर्गुणों को हटा करके भक्ति उसमें लगा देगी, किंतु वो गुण रहते हुए भी भक्ति नहीं ला सकते। इसलिए जो लोग साधारण हैं वो तो साधुओं की महिमा समझ करके नहीं समझते, वो इसमें डिफरेंस जो क्या है ये नहीं समझ पाते, ये कौन भक्त है, किसमें निष्ठा है, किसमें निष्ठा नहीं। वो देखते हैं ये बड़ा दयालु है, हमारे लिए 10 लाख रुपया मंदिर में दे दिया और एक दरिद्र आदमी नहीं दे सका, किंतु उसमें भक्ति है। कौन आदमी कहेगा ये किस में भक्ति है? वहां पर लेकर के प्लेकार्ड में लेकर के हम या पत्थर पर लेकर के खुदाई करके कर दें, नहीं नहीं भक्त ने 10 लाख रुपया दिया। और जब मंदिर में आएगा तो 10 आदमी 20 आदमी जाकर के हाथ जोड़ करके उसको लाएगा। और जो दीनहीन सचमुच में भगवान का भजन करने वाला है, दिन रात करताल से बजाता कीर्तन करता है, प्रेम में मस्त हो जाता है, संसार का पता नहीं, उसको लाएंगे कोई? यहाँ पर विदुर जी अपना वेश बदल करके घूम रहे हैं, वहां पर उनको कोई समझेगा? भरत महाराज को कोई पहचान सका? बड़े बड़े लोग नहीं पहचान सके, साधारण लोगों की, कनिष्ठ लोगों की तो बात ही क्या है। इसलिए दोनों निष्ठाओं में पहली वाली निष्ठा भक्ति का है, दूसरी वाली निष्ठा भक्ति हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, भक्ति के लिए अनुकूल होने पर भी वो गौण है, मुख्य नहीं है। इसलिए हमारी निष्ठा किसमें होनी चाहिए? श्रवण में, कीर्तन में, स्मरण में, भगवान का चिंतन करने में, इसमें प्रधान रूप में हो। और जैसा स्वभाव है, जैसा जो कुछ है, उसके लिए अधिक चिंता करने की बात नहीं है। यहाँ तक कि यदि एक चोर चोरी करता था, सुना है हमने, तो वो साधु हो गया, तो चोरी की आदत गई नहीं, तो वो क्या करे? यहाँ पर साधुओं का समावेश हुआ, हरि कथा हो रही है, तो एक का खड़ाऊ रख दिया वहाँ और उसका खड़ाऊ रख दिया यहाँ, उत्साह है। ये हमको गौणी कीर्तन आप इन गुणों को बहुत से कुछ उद्धत भक्त होते हैं, उद्धत मैंने क्या उद्धत बेपरवाह होते हैं, ठीक से नहीं करें, हरि कथा सुनना है तो सुनो नहीं तो चले जाओ, किसी को देखा जो कुछ कर रहा है उठा उठा यहां से, नहीं करना चाहिए तभी कर देते, उनकी बात को बुरा नहीं मानते। इसी तरह से यदि गुरु वैष्णव शासन करते हैं तो उसके लिए अपना कल्याण समझो,